शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य मात्र दुखी है। क्यों दुखी है, कारण क्या है, क्यों दुखी है? क्योंकि माया रावण ने सबको श्रापित कर दिया है। किसी के ऊपर कोई श्राप होता है तो वो दुखी हो जाता है ना, तो माया रावण ने सबको श्रापित कर दिया है। और कैसे हो गई श्रापित, क्योंकि माया रावण की मत पर चले। जब माया रावण का राज्य शुरू होता है तो उसकी मत पर चलने से श्रापित हो जाते हैं। फिर बाबा आकर के श्री मत अर्थात अद्वैत मत देकर सबको वर्षा देते हैं। बस यही खेल है। तो बाबा कहते हैं इस खेल में तुम कभी भी फंसो मत। खेल समझेंगे तो फंसेंगे नहीं। फंसेंगे नहीं माना दुखी नहीं होंगे, क्योंकि खेल है ना। खेल में कभी हार होती है कभी जीत होती है, तो तुम्हारी अभी जीत होनी है। इसीलिए अभी अद्वैत बाबा की श्री मत पर चलो तो फिर से ये श्राप खत्म हो और स्वर्ग का वर्षा प्राप्त कर सको। तो सारी मुरली बाबा ने इसी आधार पर चलाई है। सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 10 फरवरी 2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, श्रीमत को दूसरा नाम क्या देंगे, अद्वैत मत, क्योंकि दुनिया में तो कितनी मतें हैं तो सब द्वैत मत है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है, ये भी दुनिया नहीं जानती है कि बाप वर्षा देता है और रावण श्रापित करता है। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलकर क्या बनते हैं और माया रावण की मत पर चलकर क्या बनते हैं? तो श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठे हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। कहलाते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, पर है तो कुख वंशावली। कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा को जानते ही नहीं है। वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। शिव बाबा अकेले नहीं आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को साथ में लाते हैं। क्योंकि जैसे शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो साक्षात्कार मूर्त है उनको रचते हैं। तो बाबा कहते हैं अकेले नहीं आते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। तो त्रिमूर्ति साथ में है शिव बाबा की, तो त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच, पर तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा तो बोलते नहीं है, केवल ब्रह्मा द्वारा ही बोलते हैं। अब तीनों द्वारा तो बोलेंगे नहीं, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए स्वर्ग का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो जीवन मुक्ति चाहते हैं। अभी है जीवन बंद, सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, परमात्मा को पुकारते हैं। क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। क्या अर्थ नहीं समझते? मात पिता तो कहते हैं, लेकिन अर्थ क्या नहीं समझते हैं कि माँ कौन है, कैसे बाप माँ द्वारा रचते हैं। बाबा कहते वो तो जानते नहीं, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। चलो मात पिता कहते हैं तो मात पिता वो पिता है, माँ द्वारा रचना रचते हैं, माँ कौन है पिता कौन है पता ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं अगर वो पिता है तो फिर वर्षा चाहिए, वर्षे को भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं गाते हैं परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है वर्षा। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प के बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी अभी श्रापित हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि अभी हम सब श्रापित हैं, ये दुनिया नहीं जानती। रावण का श्राप लगा हुआ है इसलिए सब दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे, कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसको पता नहीं है। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग को दे दी है, लाखों वर्ष। कलयुग का फिर जैसे चार गुना हो गया, कलयुग 4,32,000, फिर देखो द्वापुर फिर 8,64,000, फिर त्रेता तीन गुना, फिर सतयुग उसे चार गुना। तो कितनी लंबी आयु दे दी है सतयुग को। देखो लाखों वर्ष की आयु तो सिर्फ सतयुग को दे दी है, फिर त्रेता की, फिर द्वापुर कलयुग की। तो उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, लाखों साल सतयुग के तो कितने ढेर हो जाए। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, देखो गाया भी जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। अब ऐसे थोड़ी कि वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं होने में कोई लाखों वर्ष थोड़ी चाहिए। तो ये भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण फिर स्वच्छ का अपोजिट क्या है, फिर रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं, तुच्छ बुद्धि मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं रावण। मुख्य बात तो ये है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। ये भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक है, रावण राज्य कब से कब तक है, कुछ पता नहीं। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, यहाँ ही रावण राज्य भी है, साथ साथ है, स्वर्ग भी अभी है, नरक भी अभी है, सब साथ साथ है। अनेक मत मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, कितनी ऊंची महिमा है। तो वो भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं, क्यों है तो वो भी मनुष्य और उनकी इतनी महिमा गाते हैं क्यों, जरूर फर्क होगा ना उनमें और अभी के मनुष्यों में, बहुत फर्क होगा ना, तभी तो इतनी महिमा गाते हैं उनकी। अभी तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो, अभी सीख रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य। कलयुगी मनुष्यों को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात इसका मतलब क्या है, कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाना, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। देवता तो बनेंगे सतयुग में, विश्व के मालिक बनेंगे, पर उसके पहले तो शांति धाम के मालिक बनेंगे, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। ये तो शांति धाम नहीं है ना, ये कलयुगी दुनिया को तो शांति धाम नहीं कहेंगे ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े, इस सृष्टि पर कर्म जरूर करना पड़े, तो ये तो शांति धाम नहीं है, वो है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ कोई कर्म नहीं होता, वो है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व का मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, अभी कलयुग में आ गए तो लायक नहीं है, तो लायक बन रहे हो विश्व का मालिक बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है, तुम बच्चे हो योग बल वाले, और वो है दुनिया में है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वो है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है, दोनों प्रकार की हिंसाएं हैं, क्रोध की भी हिंसा है तो काम की भी हिंसा है। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं ये हिंसा है, काम कटारी चलाना ये हिंसा है, सन्यासी भी समझते हैं, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय, पवित्र तो वो भी बनते हैं, हम भी बनते हैं, लेकिन क्या अंतर है, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। परमात्मा को तो जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय और किसी की प्रीत बुद्धि है नहीं। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वो आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए गाए जाते हैं, जरूरी थोड़ी कि अगले जन्म में भी वो ऐसे ही बनेंगे, एक जन्म के लिए गाए जाते हैं आशिक माशूक, तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक, भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ भक्ति मार्ग में तुम एक मुझ माशूक को याद करते आए हो, तो मैं क्या कहता हूँ माशूक, अब मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से तुम छूट जाएंगे, याद करने से छूट जाएंगे। सतयुग में न पवित्र बनने की मेहनत करनी पड़ेगी, न याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी, इनसे छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती है, दुख में सिमरण सब करते हैं, ये है नरक। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, कलयुग को नरक है कहेंगे, स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। बड़े आदमी जो धनवान है वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितनी अंधश्रद्धा में रहते हैं, कितनी अंधश्रद्धा, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ भी नहीं, कौन से सुख घनेरे मिले। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तो कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते। स्वर्ग के सुख घनेरे उस मात पिता से मिले हैं, बाबा कहते ये नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तो मात पिता ये किसने बोला, आत्मा बोलती है। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है, जहाँ सुख घनेरे होंगे उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है, स्वर्ग नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है ना, तो स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के कितने महल थे, चले जाओ स्वर्ग में कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था, हाँ कितना अनगिनत धन था, जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। चलो देवताओं के भी बनाए मंदिर तो भी एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वो सब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, मंदिर तो बने चित्र तो बने पर वो देवताएं गए कहाँ, कितना लूट कर ले गए वो मंदिर, हाँ बनाए थे वो भी लाखों, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे वो सब, मंदिर भी कहाँ चले गए, कितने लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। चलो हो गया सो हो गया ड्रामा, लूट के ले गए, भारत को कंगाल बना दिया, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हो। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजे पर भी जड़ित लगी हुई होगी, सोने के महलों में केवल दीवारों पर जड़ित नहीं होंगे हीरे जवाहरात, पर दीवारों पर भी हीरे जवाहरात जड़ित होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं, हाँ बहुत एकदम उनके भी आलीशान मंदिर होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है जो पहले थे, वो नहीं है, पर चांदी के दरवाजे तो अभी भी है कई मंदिरों में। अब हीरे आदि तो नहीं है जो पहले थे, अभी तुम जानते हो इस बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही हैं, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हाँ बाबा कहते हैं भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। कौन राज्य करते थे? हेवन था, चलो भारत क्राइस्ट के 3000 साल पहले, तो कौन राज्य करते थे ये तो किसको भी पता नहीं है। बाकी ये समझते जरूर है, कौन सी बात समझते हैं, कि भारत बहुत पुराना है, भारत बहुत प्राचीन है, इतना तो समझते हैं। तो ये स्वर्ग था ना, बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला फादर। सर जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला फादर तो जरूर वो फादर आया होगा, फिर स्वर्ग स्थापन किया होगा। तो बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग का मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्षों की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं है, इनों की तो डिनास्टी होगी, हाँ पूरी राजाई घराना होगा ना, राजाई का तो डिनास्टी होगी ना, फिर इनों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, जो विजयंती माला है, विजय माला है, ये सब राजाओं की माला है ना, तो सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरण करते हैं ना, जो बाप के मददगार बन, कौन बनते हैं वो जो माला में, जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उनों की ही माला बनती है। फिर वही राजा बनते हैं तो उनों की माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते हैं पूज्य, फिर पुजारी बनते हैं, उनों का ही ये यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। कैसी विचित्र बात हो गई, हम ही पूज्य बनते हैं फिर माला बनाते हैं, फिर हम ही पुजारी बन करके अपने पूज्य जो मणके हैं उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे। पहले वो माला लेते हैं, हाथ लगाते हैं, पकड़ते हैं, फिर माथा टेकते हैं, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर, हाँ बाबा कहते हैं माला जपते हैं, है ना, माला जपते हैं, भाई आज फलाने के नाम पर इतनी मालाएं जपेंगे, इसके नाम पर इतनी मालाएं जपते हैं। तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को ये ज्ञान नहीं है। क्रिश्चियन थोड़ी समझते ये किसकी माला फेरते हैं, हाँ उनकी फिर अपनी माला है, उनके जो होंगे सारे सेंट्स होंगे उनकी माला होगी, और भारतवासी जो वैजयंती माला फेरते हैं तो वो तो भारत के ही तो राजाएं होंगे, महाराजाएं सत्यु के जिनकी माला फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियंस थोड़ी समझते कि ये किसकी माला फेरते हैं, ये माला है ही उनों की। कौन किसकी है वैजयंती माला? उनों की है जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय तो सब पतित हैं, जो पावन थे वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। कहाँ? सतयुग से आते 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 सब पतित बने हैं। फिर नंबर वार सब जाएंगे, नंबर वार आते हैं, नंबर वार जाते हैं। नंबर वार आते हैं, नंबर वार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। ये झाड़ है, चले जाओ झाड़ का चित्र देखो, ये झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ हैं। अभी ये सारा झाड़ खलास होना है, हाँ, जड़ी भूत हो चुका है तो सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। लग रहा है ना, फाउंडेशन लग रहा है, खलास होना है, पर जड़े तो दिखाई नहीं देती है, तो हम तो जड़ों में बैठे हैं। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा, तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन, उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। तो फाउंडेशन में कौन बैठे हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले सब फाउंडेशन में बैठे हैं, दोनों हैं। अब सत्युग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, अभी तो सब हिंदू कहलाने लगे हैं, वो भी फिर कन्वर्ट भी होते गए हैं, तो वो तो है ही नहीं धर्म, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना, जिनके चित्र है, कितने देवी देवताओं के चित्र हैं, तो उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। कह देते हैं फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना क्या है? लाखों वर्ष तो पुरानी चीज है ही नहीं कोई भी, पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो 5000 साल पहले था तो वो सबसे पुराना है। उनके आगे तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, 5000 साल से पहले तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई है वो फिर वहां भरतू हो जाएगी, सब कैसे ऑटोमेटिक होगा, खाली होती गई है सब, खाली जहां भी जाओ सब खानियां खाली है, तो खाली होती गई है फिर भरतू हो जाएगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना, बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है, सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है, आते आते क्या होता है, आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है, अब जर्जरी भूत अवस्था को पाता है सब आत्माएं सृष्टि मंच पर आ जाती है, फिर क्या होता है, फिर जाना हुआ होता है वापस, तो उस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिर कहा जाता है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। राम भी जाते रावण भी जाते, जिनका परिवार बहुत बड़ा, अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है, राम का परिवार कितना छोटा है, रावण का परिवार तो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है, वो तो कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना, वो सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाएंगे रावण संप्रदाय वाले सब जाएंगे, राम संप्रदाय वाले भी सब जाएंगे, तो वो सब जाएंगे, बाकी थोड़े रह जाएंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, दोनों जाएंगे थोड़े बचेंगे, फिर बाबा कहते रावण संप्रदाय वाले स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे, बाकी तुम जो पढ़ते हो वो नंबर वार आएंगे स्वर्ग में। बाबा ने सारा प्लान बता दिया, ये कहते ना इसलिए कहावत भी, मनुष्य के मन में कुछ और ईश्वर के मन में कुछ और, तो भगवान कुछ और सोचते हैं, मनुष्य कुछ और सोचते हैं। तो बाकी तुम जो पढ़ते हो वो नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वो निराकारी झाड़ है और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो बाबा कहते इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने, पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अब न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे तो खुशी कहाँ से आएगी। तो पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो क्या होगा, अगर विकार में गिरा तो बाकी ये सब भूल जाएंगे। विकार में गिरा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सारा ज्ञान भूल जाएंगे। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन, सोने का बर्तन पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता है। चलो वो भूलेगा भले नहीं ज्ञान को, लेकिन दूसरे को सुनाने की हिम्मत नहीं आएगी। तो अगर पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी, ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी जहाँ बाप टीचर सतगुरु तीनों एक है और बाप ने रचा फिर वही पढ़ा रहे हैं, फिर वही सदगति करेंगे। तो बाबा कहते ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वो गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। बाबा के सामने बैठकर मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। उस समय नई नई टेप मशीन निकली थी तो बाबा के पास ले गया था कोई और कहा कि बाबा देखो ये एक टेप मशीन है, आप इसमें जो आप बोलेंगे ना ये पूरा रिकॉर्ड कर लेगा। फिर बाबा आपको अगर दोबारा उसको सुनना है तो आप उसको सुन भी सकेंगे, सब रिकॉर्ड हो गया। तो बाबा को तो बहुत अच्छी लगी बात, कहा कि अभी बच्चे हाँ अभी सबके पास ले जाओ, बताओ कि बाबा की ये मुरली चली है, नहीं तो खाली कागज पर ही पढ़ते थे। बाबा ने कहा एक दिन सबके पास आ जाएगी। कोई भी नई इन्वेंशन होती है फिर देखो कैसे फटाफट सबके पास आ जाती है। सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों को सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। अभी तो क्या क्या चीजें बनवाई है बाबा ने, बनवाई है साइंस के द्वारा, जो बच्चों को तो बहुत सुख दे रही है। बच्चों को सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, किस बात में बाबा कहते बड़ी बात नहीं है। उस समय टेप मशीन थी तो बहुत महंगी थी ना, तो बाबा को कहे बाबा हम कहाँ से खरीदेंगे, इतने तो कोई बेगरी पार्ट तो था ही, इतने तो नहीं था कि भाई वो सब टेप मशीन खरीदे। तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, ये सावल शाह बैठा है, सावल शाह बाबा किसी न किसी को टच करेगा और कैसे तुमको मिल जाएगी टेप मशीन। अभी तो क्या टेप मशीन क्या बड़ी बात है, मोबाइल देखो क्या बढ़िया बढ़िया मोबाइल बन गए हैं, और देखो क्या क्या मकान मिल रहे हैं, जमीनें मिल रही हैं। तो अभी तो बाबा ही टच कर रहा है ना, तो कई कहते बाबा भी टच कर रहा है, दादियां भी टच कर रही है, और इतनी दीदियां गई है वो भी टच कर रही है, वो भी टच कर रही है। अभी मैं लुधियाना गई थी तो राजबेन वहां उन्होंने रिट्रीट सेंटर तो बनाया, लेकिन उनको लगा कि अभी ये छोटा पड़ रहा है जो बनाया, और चाहिए बड़ा डाइनिंग हॉल चाहिए, ये बड़ा चाहिए, ऐसे सोचती थी। और शरीर छोड़ा तो देखो उसके जाने के बाद इतनी जमीन मिल गई जो बात पर पूछो, तो कहा ये राज बहन ने किसका जो संकल्प था ना वो बुद्धियों को टच किया, जो लोगों ने आकर के कहा कि आप ये जमीन लो, पास वाली जमीन लो, ये लो वो लो, तो देखो वो राज बहन ने टच करके उन आत्माओं को कहा है। तो देखो तो दादियां तो कर रही है, बाबा भी कर रहे हैं, तो दीदियां भी कर रही है। तो देखो बाबा कहते हैं रोज कोई न कोई का समाचार तो सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सावल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है। ब्रह्मा बाबा हाँ, सावल शाह की हुंडी सकार, सावल शाह हुंडी सकारेंगे, ये एक मिसाल आता है। कोई भक्त था तो वो बस सारा दिन बस भक्ति करता रहता था। उसकी पत्नी कहती थी कि सारा दिन तो भक्ति करते रहते हो, कुछ मेहनत करो कमाओ तब तो खाएंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ। तो कहा वो सावल शाह हुंडी भरेगा, सावल शाह हुंडी भरेगा। और सचमुच कहाँ से उनको धन मिल जाता था, सावल शाह हुंडी भरता था। तो हुंडी भरता था माना उसको जैसे कहीं से मिल जाता था। तो बाबा कहते ये सावल शाह है ना, पहले गोरा था अब सांवरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा, एक से सर्प, क्या एक को सर्प ने डसा? अब वो श्याम बना तो केवल एक ही श्री कृष्ण बना क्या श्याम? केवल एक को ही सर्प ने डसा क्या? एक को सर्प नहीं डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है, विकार में जाने से सांवरे बन जाते हैं। एक अकेला श्री कृष्ण की आत्मा नहीं, सब मनुष्य आत्माओं को फिर सर्प डसता है, सब सांवरे बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, बेहद का बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक, बाबा ने इंग्लिश शब्द यूज किया, मेरे खातिर, मेरे खातिर, मैं कहता हूँ मेरे खातिर तुम पवित्र बनो। बाबा ने एक बार कहा था ना मेरे खातिर पवित्र बनो, क्या तुम मेरा इतना भी कहना नहीं मानोगे? जो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, ये कहना नहीं मानोगे? यहाँ जैसे बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से ये भीख मांगते हैं, भगवान भीख मांगते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो भगवान द्वार पर खड़ा होकर कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बच्चों से ये भीख मांगते हैं कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। तो पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनेंगे और याद भी में रहेंगे तो याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। ये है योग अग्नि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, पानी भी तत्व है, तो पांच तत्व कहे जाते हैं ना, ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां तो सागर से निकलती है, अब अगर ये नदियां पतित पावनी है पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए, तो उस पर तो उसकी बजाय तो सागर में ही नहा लो ना, सागर से ही तो फिर नदियां बनती है। तो नदियां तो सागर से निकलती है तो पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना, तभी तो फिर वो नदियां पावन पतित पावनी कहलाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। दूसरा, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने की श्रेष्ठ कर्तव्य मनुष्य को डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार। विजयी रत्नों का यादगार क्या है? बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। हाँ, जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है, तब कहेंगे विजयी। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। किसको कहेंगे एकांतवासी? एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। डिटेल, अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। अभी तो केवल सोचते हैं, पर इसको स्मृति स्वरूप में लाएंगे, हाँ तब आत्माओं को मुक्ति दिला सकेंगे। सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे, जहाँ एकता है और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल शाम से तो आप सुनी रहे हैं हमारी अति स्नेही अति प्यारी बाबा की लाडली नलिनी दीदी के बारे में। तो पहले तो हम आपको शशि बहन का बताएंगे, जिन्होंने शरीर छोड़ा और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। तो आज सुबह 9:30 बजे आदरणीय शशि बहन जी के पार्थिव देह को चार धाम की यात्रा के लिए पांडव भवन लाया जाएगा। तो आज सुबह ही उनका संस्कार होगा। तो 9:30 बजे पांडव भवन लाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार के बाद 12 बजे हिस्ट्री हॉल में भोग लगेगा। शशि बहन जी, संगम भवन आबू रोड वाली, आपने रजौरी गार्डन दिल्ली से ये ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ अपने सुदेश दीदी से पालना प्राप्त की। सुदेश दीदी भी रजौरी गार्डन में उस समय थी, तो पालना सुदेश दीदी से प्राप्त की। मधुबन में आपने अनेक वर्षों तक संगम भवन में अपनी सेवाएं दी, फिर अभी बहुत वर्षों से पांडव भवन में सेवाएं दे रही थी। यहाँ भी आपने अनेक डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी। अभी पिछले एक माह से आपकी तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी। परसों रात को 11:15 बजे अपना देह त्याग किया। ये बहुत नशे वाली खुश नसीब आत्मा थी। और नल्ली दीदी का भी आपने सुना होगा, कल शाम को 6:35 को आदरणीय नल्ली दीदी जी ने अपना देह त्याग कर बाबा की गोद में समा गई। आप साकार मम्मा बाबा के हस्तों से पालना ली हुई विशेष आत्मा थी। आपका लौकिक परिवार भी विशेष था। वर्तमान समय आप मुंबई में घाटकों पर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। ऐसी अनेक विशेषताओं से संपन्न महान आत्मा के लिए हम विशेष योगदान अभी देंगे। नल्ली दीदी को 11 बजे आज मुंबई में अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके लिए विशेष मधुबन से करुणा भाई और देव भाई मुंबई गए, कल रात को ही निकल गए और अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे करुणा भाई और देव भाई शांतिवन से। और दूसरी भी एक बहन का आपने सुना होगा, यूपी कानपुर जोन इटावा सिविल लाइन सेवा केंद्र की बीके त्रिवेणी भाई जी जो 1970 से पूरे परिवार 3 बेटियां 1 बेटा सहित सेवा दे रहे थे। 92 वर्ष की आयु में रात्रि को 11:05 पर उन्होंने अपना पुराना शरीर गोद ली। विशेष आत्मा के प्रति योगदान देंगे। और भी एक आत्मा का सुना होगा आपने, जक्कूर, ये बैंगलोर सिटी सेंटर जो जक्कूर रिट्रीट सेंटर है बैंगलोर सिटी का, वहाँ की बिंदु बहन, उनको भी कैंसर की तकलीफ थी और उन्होंने भी 2 दिन पहले शरीर छोड़ा। जक्कूर में हम कई बार गए हैं और वो ही संभालती थी। पद्मा दीदी के देह त्याग के बाद पूरा जक्कूर बहुत सुंदर स्थान वो संभालती थी और उन्होंने भी शरीर छोड़ा। भी हम सब इन आत्माओं के प्रति योगदान देंगे। और शशि बहन के पार्थिव देह का 9:30 बजे यहाँ ले आएंगे और फिर अंतिम संस्कार होगा। ओम शांति।